मॉर्निंग। आज का दिवस लास्ट दिवस कौन सा है? उमंग उत्साह का दिवस। इसी उमंग उत्साह के साथ जाएंगे ना आज आप। और स्वमान आज की मुरली का वरदान, मैं शक्तिशाली साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। क्या क्या हो जाए तो भी मैं साक्षी दृष्टा हूँ। वरदान याद कीजिए। परिवार में हलचल, धन ऊपर नीचे और बीमारी, शारीरिक कष्ट, ये कुछ भी हो जाए तो भी साक्षी दृष्टा स्थिति। और यही शर्त पे सूर्य भाई जी को स्पेशल बुलाया गया है। शर्त ये कि लोग आपसे ही समाधान पूछते रहते हैं। आप इनको ही ऐसा बना के जाएं जो ये समाधान स्वरूप बन जाएं, औरों को समाधान देने वाले बन जाएं। फिर सूर्य भाई सोचेंगे मेरी क्या जरूरत रहेगी।
नहीं, मेरी तो ये इच्छा ही है कम से कम 1,00,000 भाई बहने समाधान दें संसार को।
और ये इच्छा सूर्य भाई जी की हम आज से नहीं देख रहे, अपने बचपन से देख रहे हैं। कुमार कुमारियां विशेष रूप से बहुत बहुत पावरफुल होने चाहिए, उनका पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। एक बार जो बाबा का बन गया बस वो वापस नहीं जाए। इतनी बढ़िया कंटीली तारे लगा दो करंट वाली चारों तरफ जो इस किले से बाहर ना निकल सके। इस तरह की अंदर की अर्ज, तीव्र इच्छा कि हरेक का पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो, तो ये बहुत बहुत छोटेपन से हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कि कभी किसी तरह का ग्रुप बना के, कभी कुछ स्पेशल समझानी दे के, तो हमेशा से आप इस सेवा में जो इंटरनल स्थिति अच्छी बनाने की सेवा, क्योंकि ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी होगी तो बाकी दुनिया की सेवा वो अपने आप कर लेंगे, तो इसीलिए ब्राह्मणों की बहुत अच्छी स्थिति हो, इस तरह की सेवा करने की आपकी लगन, तो ये सूर्य समान सेवा तो है ही है। हम बचपन में नाम सुनते थे सूरज कुमार, फिर उनका नाम बदलकर हो गया योगी राज। बहुत सारे आर्टिकल्स योगी राज के नाम से आते थे। ज्ञानामृत में हम दो ही आर्टिकल पढ़ते थे, एक जगदीश भाई जी का, एक सूरज भाई जी का, बाकी जरूरत ही नहीं समझते थे पढ़ने की। तो इसीलिए बहुत लंबे समय से, एक लंबा काल पुरुषार्थ का, सेवा का, ना सिर्फ अपने देश में, विदेशों में भी जा जाकर आपने दुनिया को बहुत कुछ दिया, आलोकित किया, सबके अंदर पुरुषार्थ की अग्नि प्रज्वलित की है। ऐसे हमारे आदरणीय वरिष्ठ राजयोगी भाई जी का हम अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज जो हम सुनेंगे, बहुत सी बातें आप उनके बारे में जानते हैं। जब भी आपका परिचय दिया जाता है बाबा मिलन से पहले, वो बहुत अच्छी तरह समझाया दिया जाता है। हम उसमें समय नहीं लगाएंगे क्योंकि क्लास के बाद आपको पर्चियां भी मिली हुई है, फिर भी और समाधान देने के लिए आप बैठेंगे ही, तो वो सब हम बैठ के आराम से सुनेंगे। तो सूर्य भाई जी से हम सुनेंगे कि हम सभी के लिए क्या सहज सहज हो जाए कि सबके सब, सब कुछ दुनिया में होते हुए, उसको देखते हुए साक्षी भी हो जाएं, निर्लिप्त भी रहें, प्रभावित ना हो। परेशान होना तो बहुत दूर की बात है, वो तो हो ही नहीं सकते। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच जी।
पढ़ना मैं बताऊंगा।
हाँ जी हाँ जी।
ओम शांति। पहले इंटरव्यू ले लूं आपका? तो पहला इंटरव्यू का प्रश्न है, योग किस किस का अच्छा है? हाथ उठाएंगे जरा। ठीक है, यहाँ किस किस का योग अच्छा लगा? बढ़ गई संख्या। अमृत वेला कौन कौन उठते हैं? यहाँ नहीं, यहाँ तो मुझे पता है। हाथ नीचे कर लो। अपने घरों में? अच्छा, इतने ज्यादा? कौन कौन अपने अमृत वेले से संतुष्ट हैं? ठीक है, अमृत वेला यदि संतुष्ट हो जाए तो अनेक समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। मैं आपको पांच बातें कहूंगा समाधान स्वरूप जीवन। जीवन की यात्रा में हम कैसे चले कि समस्याएं कम से कम आए और जो छोटी मोटी आए उनको सहज भाव से पार कर लें। एक बात इम्पोर्टेंट कि समस्याएं सभी बड़ी नहीं होती, पर कई लोग हर समस्या को बड़ा समझते हैं। बहुत ध्यान देना है, वो व्यक्ति जो समस्या को समस्या मानता ही नहीं उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। हर समस्या उसके लिए नया द्वार खोलेगी, हर समस्या चैलेंज बनकर उनकी शक्तियों को बढ़ाएगी। इसलिए हर बात को समस्या मान लेना इसको चेंज कर देंगे। समस्याओं से अधिक पावरफुल हम हैं, समस्याओं का समाधान हमारे पास है। ये दो बातें पक्की कर दें जीवन में। क्या इरादा आपका है या नहीं? समस्याओं का समाधान भी हमारे पास है और हम उनसे शक्तिशाली भी हैं। समस्याओं से घबराना नहीं है, समस्याओं को पार करके ही कोई मनुष्य महान बनता है। अनेक चुनौतियों का सामना करके ही किसी का श्रेष्ठ विवेक जगता है, शक्तियां जगती हैं। इसलिए अपने दृष्टिकोण को बदल दें। अमृत वेला पहली धारणा, मैं इस पे आपको कुछ कहूंगा। दूसरी धारणा स्वमान, जिसके बारे में आप सुन चुके होंगे, सुनते रहते हैं, वरदान में रोज स्वमान ही तो आ रहे हैं। लेकिन तीन सुंदर धारणाएं भी हैं, अगर हम उनको साथ लेकर चलें तो ये सत्य है कि जीवन में समस्याएं होंगी नहीं। सरल जीवन, सहज भाव से जीवन जीना, संतुष्ट जीवन। जो संतुष्ट हैं, उन्हें कुछ मिला या नहीं मिला वो संतुष्ट हैं, आधी समस्याएं तो तुरंत खत्म हो जाती हैं। तीसरी धारणा है निरहंकारिता, ईगोलेसनेस, मैंपन अनेक समस्याओं को जन्म देता है। जब हम मैंपन को छोड़ते जाते हैं तो कई समस्याएं समाप्त होती हैं। ये पांच सूत्र हैं जीवन के, 5 पॉइंट प्रोग्राम बना दें अपना, इन पर चलेंगे तो आने वाले समय में भी जो बहुत भयानक है, जिसकी किसी को कल्पना नहीं है अभी, उसमें भी लगेगा समस्या है नहीं। जो आज बाबा ने कहा, शुरू में भी साक्षात्कार हुए और अंत में याद करो आज के अंतिम महावाक्य, मेरवा मौत, दुनिया में मौत ही मौत होंगी और ब्राह्मणों का शिकार नहीं होगा, आनंद रहेगा। घर जाने की स्मृति, स्वर्ग में उच्च पद पाने का नशा, भगवान मिला इसकी खुशी नशा, ये सब उनको ऊपर रखेंगे। बाबा ने कभी कहा है, जो बाबा के आज भी था, ये वरदान में याद करो, जो सच्चे हैं, और किसको याद है बोलो, साथी हैं, उनका जिम्मेदार बाबा है। ऐसी बातें कागज पे भी नोट कर लेनी चाहिए, डायरी में भी, और इन्हें पढ़ना चाहिए। भगवान किसकी जिम्मेदारी लेगा ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो विनाश काल जो बहुत भयानक चीज है, उसकी मैंने कहा कल्पनाएं भी नहीं है अभी संसार में किसी को, ब्राह्मणों को भी नहीं। मोबाइल स्विच ऑफ कर लो भाई। तो ऐसे समय में भी हमें लगेगा हमारे पास कोई समस्या नहीं, भोजन नहीं है, दूध नहीं मिलेगा, हमें लगेगा दाल रोटी तो मिल रही है, आनंद, संतुष्ट है ना। जो संतुष्ट होंगे उन्हें लगेगा नहीं कि कुछ मिल नहीं रहा, और जो संतुष्ट नहीं है उन्हें अनेक संकल्प चलेंगे, ये था वो था, ऐसा खाते थे वैसा खाते थे, चाय भी नहीं मिल रही है, सिर दर्द हो गया है, बाबा कुछ तो करो, चाय तो पिला दो, नहीं। और जिन जो संतुष्ट हैं, कुछ नहीं, जो मिल रहा उसी में संतुष्ट, सिद्धार्थ होगा ही नहीं, जो मिल रहा उसी में तृप्त। आज बाबा ने कहा ना, घर चलने की तैयारी करो, स्लोगन था ना। मैं उससे पहले कहता हूँ, विनाश की भी तैयारी करो, अपने विनाश होने की नहीं, विनाश में अच्छा अडोल स्थिति बनाने की, विनाश में सबको मदद करने की, विनाश को साक्षी भाव से देखने की। मैं सोचा करता हूँ, यज्ञ का जो मालिक है वो कहाँ बैठा है? ऊपर साक्षी है। आज बाबा ने कहा, स्थापना करना नई दुनिया की और विनाश करना, ये तो क्यों भूल गए मुरली इतनी जल्दी, तो मेरा काम है, सीधा फर्स्ट पर्सन में, ये तो मेरा काम है। तो जिसने अनंत बार विनाश देखा है, करोड़ों बार, मैं अनंत को थोड़ा नजदीक ले आऊं, 100 बार, उसको कुछ फर्क पड़ता है ऊपर से कि ये सब मर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, मैं चलूं विनाश को रोक दूं, प्रकृति को कहूं अब चुप हो जाओ थोड़ी देर, होगा? क्योंकि उसकी उसका ही काम है ये, उसको सबको ले जाना है, सदा के लिए दुखों से छुड़ाना है, इसलिए थोड़ा सा दुख कुछ नहीं लगेगा उसे भी। तो जब वो साक्षी है, हमें भी साक्षी होना चाहिए, सीखेंगे बाबा से सहज जीवन जीना। मैं तीनों धारणाओं को एक साथ लेके चलूंगा, सहज जीवन जीना है सहज भाव से। इसके लिए पहले दो धारणाएं पक्की कर लें, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा उसे स्वीकार करने की अभी से आदत डालें, नेचर बना दें कि स्वीकार करके ही चलना है, स्वीकार नहीं करेंगे तो परेशान होंगे, बहुत चीजें होंगी। अब शुरुआत हो गई है कल से, मैं बताऊंगा नहीं ज्यादा, कल से हो गई है, इसलिए नहीं अब इसकी चर्चा नहीं करेंगे यहाँ हम। इसलिए पहली धारणा, जो कुछ होगा, जो हो रहा है हमारे साथ औरों के साथ, उसे स्वीकार करेंगे। कुछ चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते, जिन पर हमारा अधिकार नहीं है उन्हें स्वीकार कर लो। चिंतन करना बहुत अच्छी तरह है, एक सुंदर धारणा। दूसरी बात, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो मैं चाहूं वही हो, वही करें। अभी भी दो परिवार मिल रहे थे, एक ने कहा मैं बहुत इरिटेट होता हूं, मैंने कहा क्यों? जो मैं चाहता हूं वो कोई करता ही नहीं, मैंने कहा वाकई भी नहीं करेंगे तुम्हें परेशान करने के लिए, बच्चों को मजा नहीं आता बड़ों को छेड़ने में, वैसे ही छेड़ेंगे तुम्हें। अगर भगवान सोचने लगे मैं जो चाहता हूँ ये मेरे बच्चे करते ही नहीं, वो तो दुखी होता रहे रोज, कितना साक्षी है। मैं सोचा करता हूँ धीरज सीखना हो तो बाबा से सीखो, धैर्य का भी सागर तो क्षमा का भी सागर, सब ठीक हो जाएंगे, इन्हें तो ठीक होना, इन्हें देवता बनना है। कामनाएं कम करेंगे और स्वीकार करेंगे, एक्सेप्टेंस एंड नो एक्सपेक्टेशंस, इन दोनों को पक्का कर दें सभी, तो सहज भाव आएगा जीवन में। क्योंकि समस्याओं के समाधान के लिए और समस्याओं के कारणों के लिए एक बात आपको ध्यान में रखनी है, उन्हें ठीक करेंगे तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। मनुष्य आत्मा, उसकी शक्ति मन, मन की शक्तियों को जितना वेस्ट किया जाएगा हर बात समस्या महसूस होगी, जैसे ठंडी हवा चल जाए बाहर, जिनके शरीर कमजोर है वो सूं सूं करने लगेंगे, जुकाम हो गया भाई, फिर किसी को बुखार हो गया, हो जाएगा या नहीं। और जो स्ट्रांग है बॉडीली वो आनंद लेंगे, घूमेंगे ठंडी हवाओं में। मन की शक्तियों को जो आत्माएं नष्ट कर रही हैं, उनके आगे समस्याओं के पहाड़ हैं। और जो मन की शक्तियों को जमा कर रहे हैं वो समस्याओं से मुक्त हैं। मैं बहुत बार क्लासेज में सुनाया है, इसी हॉल में बाबा के संदेश में मैंने बहुत बहुत साल पहले सुना था, 45 साल हो गए होंगे। समस्याएं क्या हैं? मैं बहुत सुनाता हूँ, कमजोर मन की रचना है। तब से ही मैंने सोचा था मन को पावरफुल बना दें तो समस्याएं रहेंगी नहीं। तो हम ये ध्यान दें, हम पर चिंतन में मन को वीक तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति आनंद ले रहा है, हम ईर्ष्यावश अपनी शक्तियों को गंवा तो नहीं रहे हैं। नफरत अंदर ही हमारी शक्तियों को जलाती रहती है, उसके शिकार तो नहीं हो गए। बड़े विकारों की बात छोड़ो, क्रोध तो बड़ा विकार है। जिसके पास क्रोध की अग्नि जलती है वो तो खाली हो जाते हैं। बाबा के शब्द तो आपको याद ही होंगे, क्रोध पानी के मटके भी सुखा देता, इतनी गर्मी है क्रोध में। हमने तो बचपन में ही सुन लिया था, हमारे सीनियर साथी सुनाया करते थे, एक घंटा अगर कोई मनुष्य क्रोध में रहे तो उसकी उतनी एनर्जी नष्ट होती है जितनी कोई 18 कोस दौड़े। उन दिनों कोस चलते थे 36-40 किलोमीटर, समझ लो आपके इतनी दौड़ने में जो शक्ति जाएगी वो एक घंटा क्रोध या उसका इफेक्ट रहे, मन चिड़चिड़ा रहे, इतनी एनर्जी नष्ट होगी। एनर्जी नष्ट हो गई तो समस्याओं का आह्वान हो जाएगा। इसलिए हम बहुत पावरफुल बने स्वमान में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्वमान से अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाते चलें, अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मुझे तो बहुत खुशी होती है, रोज कम से कम दो लोग समाचार सुनाते हैं कि हमारी ये बड़ी समस्या थी ठीक हो गई। केवल एक अभ्यास से मैं मास्टर सर शक्तिवान हूँ, ये वो लोग हैं बहुत ज्यादा जो ज्ञान में नहीं है। अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के, कनाडा के, इन जगह से फोन बहुत आते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास करने से बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े रोग ठीक हो गए। देखो मैंने एक जगह देखा, अभी कहां थे, अजमेर में, कहा एक हॉस्पिटल खोला है जिनके दिलों में छेद है ना, हार्ट में छेद, ऐसे बच्चे हैं वहां, छोटे छोटे बच्चे, उनका ऑपरेशन बाद में होगा जब वो बड़े हो जाएंगे। और बाबा की शक्ति से क्या हुआ, कितने लोगों के छेद भर गए। मैं मास्टर सर शक्तिवान हूँ ये करके राइट हैंड रखा माताओं ने, छोटे बच्चे, एक का केस तो वंडरफुल था, 15-20 दिन का ही था, उस पता लगा इसके हार्ट में तो छेद है। अमेरिका की कहानी है, उसकी दादी ने फोन किया था, वो ज्ञान में है, मैंने उसको सिखाया एनर्जी, तो 11 दिन में तो छेद भर ही गया। देखो कितना अच्छा इफेक्ट है बाबा की एनर्जी का, ये बाबा की है ना सब। तो हम सभी स्वमान को बढ़ाएं, अपनी ऊंचाई को बढ़ाएं। सबसे बड़ी ऊंचाई कौन सी है स्वमान में हमारी, आप शायद मेरे प्रश्न को न समझें, मैं पूर्वज हूं। आप इस स्वमान को बढ़ाते चलो तो फ्लो सारे संसार तक जाएगा। अगर हम ये स्वमान लेते हैं मैं इस देवी हूँ, तो हमारे वाइब्रेशन हमारे भक्तों तक जाएंगे केवल। और अगर हम ये स्वमान लेते हैं मैं पूर्वज हूँ, सभी धर्मों की आत्माओं की पालना करने वाला पूर्वज, सारे संसार को हमारा प्रवाह जाएगा। जो बाबा की मुरली में अभी आया है, आप सबने सुना है मधुबन वालों से बात करते हुए संडे को, याद है? नोट किया करें ये मुरली, वो केवल मधुबन वालों की बात नहीं थी, सब के लिए है। जो तुम करोगे सारे संसार में उसकी लहर फैलेगी। श्रेष्ठ पुरुषा, इन्हीं बातों को सुन के हमने ग्रुप बनाने शुरू किए थे। दादी प्रकाशमणि बहुत कहती थी अच्छे अच्छे ग्रुप बनाओ, उनकी प्रेरणा से हम ग्रुप बनाते थे और बहुत अच्छा। एक बार हमारा छोटा ग्रुप था भाइयों का, केवल 8 घंटे योग की रेस। कहीं से दादी को पता चल गया, मैं तो नहीं बताता था क्योंकि ये बातें गुप्त रखने की होती है। दादी ने मुझे बुलाया, ऐसा पुरुषार्थ थोड़ा है क्या? मैंने कहा हाँ दादी, 8 भाई हैं। कहा सभी को दादी के साथ भोजन पे बुलाओ। दादी सब तो खुश हो गए, ये तो तुरंत गिफ्ट मिल गई। तो एक लहर फैलाने के लिए कौन हूँ मैं? पूर्वज। ये बहुत बड़ा स्वमान है, समय लेगा ये, पर इसको अपने चिंतन में, अपनी डीप फीलिंग में लाए। डीप फीलिंग का अर्थ है स्वीकार करें। पीछे एक मुरली में आ चुका था, याद करें आप। पूर्वज, घर के जो बड़े होते हैं वो सबकी केयर करते हैं ना, तुम भी पूर्वज हो। सृष्टि में चक्कर लगाकर सबकी केयर करो, बहुत बड़ी बात थी ये। चलो पूर्वज बन के संसार को दृष्टि देंगे जरा। रेड लाइट। एक और बात, अभी अभी आप सबने सुन लिया होगा साकार मुरली के स्लोगन में, सकास देने लगो तो विघ्न स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। सकास देना माना बहुत बड़ा पुण्य है, इसलिए हरेक अपनी दिनचर्या में 15 मिनट विश्व को वाइब्रेशंस देने के निश्चित करें। ना आता हो सकास देना तो बहनों से पूछ लेना, मैं उस टॉपिक पे नहीं आऊंगा अभी। बाबा से लेकर संसार में फैलाना बहुत बड़ा पुण्य है, न जाने किस किस आत्मा को मदद मिल जाएगी संसार में, किस किस की दुआएं रिटर्न होंगी, हमें पता नहीं चलेगा, ना उनको पता चलेगा हम किसको दे रहे हैं, लेकिन वो हम तक पहुंचेंगी और अनेक विघ्न नष्ट होंगे। अमृत वेला मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हम सबका। अमृत वेला ठीक तो जीवन ठीक, अमृत वेला पावरफुल तो स्थिति पावरफुल। अमृत वेले अमृत की बरसात होती है, इसलिए इसको अमृत वेला कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहते हैं कि हम इस समय में ब्रह्मलोक में विचरण कर सकते हैं। दोनों सवेरे ही ठीक हैं। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात है, सवेरे के समय बाबा हमें देता है और 5 बजे के बाद हमें लेना पड़ता है। दोनों का अंतर क्लियर है ना? वो अपनी ओर से देता है, वो वरदान भी देगा, समस्याओं का समाधान भी देगा। हम उससे मनचाही चीजें भी ले सकते हैं। आपने सुना होगा ये 77-78 की मुरलियां थी अव्यक्त। सवेरे बाप भोलानाथ बनकर बैठता है, उसे मनाया जा सकता है, रिझाया जा सकता है, क्षमा कराया जा सकता है, कुछ भी। उससे बाबा ने तो इतना अच्छा बोल दिया था, वंडरफुल, चाहे विजय माला में आने का वरदान लो, चाहे 8 की माला में आने का वरदान लो सवेरे। तो भोलानाथ भी सारे खजाने खोल कर बैठा रहता है। तो पहले तो हम अपने मन को तैयार करें, टाइम पे सो जाएं। बिजनेस वाले लेट सोते हैं, कई बहनों को भी तकलीफ होती है, उनके साथ ही लेट आते हैं, उनको भोजन खिलाना है, देर हो जाती है। कुछ भी करके मैनेज करो, प्रबंध करो अपना कि सवेरे हम 4 बजे तक तो उठ ही जाएं। अगर किसी को ऐसी जॉब है कि दिन में रेस्ट नहीं होता, रात को 11 बजे सोते हैं और अगर सवेरे उठेंगे तो दिन में हाल खराब हो जाता है, तो मैं उनके लिए ये बाबा की ओर से सुविधा दे देता हूँ। थोड़ी सी सुविधा तो सब चाहते हैं ना, 5 से थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं जितना आपको जरूरी हो। एक भाई 3 बजे रोज उठता था, बहुत ही सच्ची घटना है। अभी उठने की लगन थी उसको, लेकिन 11 बजे होते ही उसको ऑफिस में नींद आने लगती थी, सब लोग मजाक करते थे। मेरे से पूछा, किसी ने बताया हुआ था अमृत वेले के बाद सोना माना पाप है, उसको ऐसे बता दिया था। तो बेचारा न सो सकता था और न ऑफिस में जग सकता था, सिर दर्द हो जाता था, बड़ा भारी था। श्रीमत की कैसे अवज्ञा करूं, ये श्रीमत भी तो शब्द बड़ा भारी है ना कहीं कहीं। तो मेरे पास आया, मैंने कहा तुम ठीक है 3 बजे उठते हो ना, 5 तक 2 घंटा योग करके 1 घंटा सो लिया करो। सांस आ गया उसको, ठंडी सांस ली उसने, हे बाबा अब ठीक हो गया। तो बेचारे का ऑफिस में सोना बंद हो गया, लोगों की मजाक भी छूट गई। ऐसा रिजिडनेस, ऐसी कट्टरता की जरूरत नहीं है जीवन में। तो अमृत वेले उठने का सहज प्लान बनाएंगे आप। भाई लोगों का क्या इरादा है, सहज है तो इसको वैल्यू दें। रात देर तक भी बिजनेस वाले इसलिए जागते हैं ना कि कमाई, सबसे बड़ी कमाई सवेरे होगी, उठते ही प्रभु मिलन। आप 5 बजे उठे, 6 बजे उठे तो प्रभु जी तो कहीं और मिलने चले गए, फिर आपकी तरफ देखेंगे नहीं वो। तो बहुत बड़ी प्राप्तियां हैं, उठें पहले तो। उठते ही क्या करें, उठ तो बहुत जाते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि अगर आप 4 बजे उठे, 4 से 5 के समय को कैसे बिताएं जो अमृत कुंड से भर जाए जीवन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सवेरे उठते पहले पहले बाबा को गुड मॉर्निंग तो करेंगे ही, वो तो आप जानते हो। श्रेष्ठ संकल्पों से खुद को चार्ज करो। अपने अमृत वेले के समय को जितनी देर भी आपको बैठना है उसे कम से कम 5 भागों में बांटो। 5-point प्रोग्राम सवेरे के लिए बनाओ, मैंने बना के रखा है, ये करेंगे सवेरे, तो बहुत इजीनेस रहती है, बहुत आनंदकारी होता है सवेरे का समय। तो पहली चीज, सवेरे अपने को सुंदर संकल्पों से चार्ज करो। कई तरीके हो सकते हैं, बाबा से मुझे क्या क्या मिला। देखो मैं तो कभी सोचा करता हूँ इस जीवन में मैंने क्या क्या देखा, भगवान के सारे एक्ट देखे, उससे ही मन आनंदित हो जाता है और मगन। आप भी याद किया करें, बाबा से मुझे क्या क्या मिला। कितनी से लिस्ट बनेगी, कितने नहीं, अनगिनत कहने से तो काम ही नहीं चलता, फिर एक भी नहीं बना पाते। कम से कम 16 प्राप्तियों की लिस्ट बनाना। सुख मिला है बहुत, जीवन की राहें आसान कर दी हैं बाबा ने, स्वयं भगवान मिला, उसको इन आंखों से देखा, दिव्य दृष्टि चाहिए उसको देखने के लिए, हमने तो इन्हीं आंखों से देखा, सत्य ज्ञान मिल गया, भटकन बंद करा दी उसने, भक्ति के धक्कों से छुड़ा दिया। आप लिखेंगे तो बहुत सारी चीज आएंगी, कितनी मदद मिली जीवन की यात्रा में, वो साथी बन गया। प्राप्तियों की लिस्ट बनाना 16 कम से कम, अच्छी अच्छी, ये सब लिख के रखो अपने पास। जो 5-point प्रोग्राम आप बनाएंगे उसको भी लिख के रख लो अपने पास, सवेरे देख लो उसे ये करना है, क्योंकि सवेरे का समय ऐसा होता है। रात का इफेक्ट, भोजन ज्यादा खा लिया हो या भारी खाया हो उसका इफेक्ट, नींद स्वप्नों भरी रही हो उसका इफेक्ट, देर से सोए हो नींद पूरी नहीं हुई हो उसका इफेक्ट, ये इफेक्ट ब्रेन पर अपना असर डालते हैं। इनको हटाने के लिए हमें अपने माइंड को चलाना है अच्छे अच्छे विचारों में सवेरे, मेरे जैसा भगवान। ये बहुत सुंदर संकल्प है, आंख खुलते ही भगवान मिल रहा है, ऐसा भाग्य, मैं बहुत सुखी हूं, ऐसे अच्छे संकल्प सवेरे उठकर करेंगे, इनसे आप चार्ज होंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पूर्वज हूँ, मुझे बड़े बड़े काम करने हैं, बाबा मुझे तैयार करता है। मैं तो एक बात और रखता हूँ, आपको बता देता हूँ, जो भी आप में से रख लें, बाबा ने टीचर्स बहनों के ग्रुप से मिलते हुए कहा था ये किया करो सवेरे। अभी वो टीचर्स मुझे मिली, मैंने पूछा उनसे, आपको कुछ बाबा ने काम दिया था, करते हैं? क्या काम दिया था भाई, तो याद ही नहीं, बहुत सारे काम दे देता है ना प्रभु जी भी। तो मैंने याद दिलाया, उनको किसी को याद नहीं था। बाबा ने उस ग्रुप को कहा था, सवेरे बाप से दृष्टि लो और सारे संसार को दो, जो आप में से कर सके, रोज ना हो कोई बात नहीं, इसको भी अपने अमृत वेले में जोड़ लेना, पूर्वज बनकर संसार को दृष्टि देना। कुछ भी समझ में ना आए, अपने सामने गोला लाना, विश्व का ग्लोब, उसको दृष्टि देना। बाबा ने सीन दिखाया हुआ, वहीं से हमने सीखे, गुलजार दादी के माध्यम से जो दृश्य आते थे भोग में, बहुत सुंदर होते थे। तो बाबा खड़े थे पहाड़ी पर और बहुत सारी शिव शक्तियां नीचे थी, बाबा ने सबको ऊपर बुलाया, सब पहाड़ी पर पहुंच गए और कहा, देखो इस सामने सृष्टि का गोला है काला, इसको सकास दो। और सभी ने वाइब्रेशंस देने चालू किए और दिखाया जा रहा वो काले से बदला, बदलते बदलते गोल्डन में हो गया। तो बाबा ने कहा ऐसे ही किया करो, तो ग्लोब को दृष्टि देना, सकास देना, वाइब्रेशंस देना, ये सकास देने की, विश्व को मदद करने की बहुत सूक्ष्म विधि है, इससे निर्विघ्न बन जाएगा जीवन। पांच स्वरूपों का अभ्यास सवेरे एक बार करो, चिंतन कम चलता हो तीन बार कर लो, किसी को बिल्कुल चिंतन न चलता हो रिपीट कर लो पांच बार, हम देवता थे, फिर हम इस देव देवी रहे, ब्राह्मण फरिश्ते बनेंगे, मैं आत्मा हूँ, ऐसे याद कर लो। मन को कुछ काम चाहिए, हम मन को काम नहीं देते तो मन इधर उधर अपना काम ढूंढ लेता है। अगली प्रैक्टिस सवेरे रूहानी ड्रिल, मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में फरिश्ता, लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, एक मिनट भी इसकी गुड फीलिंग में आ जाओ, मेरे अंग अंग से लाइट माइट फैलती है, देखो अपना सीन। मैं एक इसमें और जोड़ता हूँ, वो भी आपको बता देता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, यानी माइट हाउस शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं और मेरे चारों ओर एक पावरफुल प्रभामंडल बन गया है। प्रभामंडल देखे ना देवताओं के चारों ओर, गोल सर्किल, बहुत पावरफुल, उसमें मैं हूँ। ये बनाने की आदत डालेंगे तो विनाश काल में भी बहुत सेफ रहेंगे, क्योंकि विनाश काल में एक प्रकोप संसार को तबाह करेगा, मैंने ये शब्द बोल दिया है, वो होगा भटकती आत्माओं का प्रकोप। क्योंकि जब बहुत मर्डर होंगे, एटम बम छोड़ दिया किसी ने, 1 करोड़ मारे गए, वो आत्माएं ऊपर भटक रही हैं, स्पेस में भटकेंगी वो हमारे ऊपर, उनका नीचे इफेक्ट बहुत बुरा हाल करेगा नीचे वालों का। अगर आपने चारों ओर प्रभा मंडल, इसको ओरा कहते हैं इंग्लिश में, वो बना लिया होगा तो आत्माएं आपसे मीलो दूर रहेंगी, आएंगी नहीं आपके पास। ये प्रैक्टिस सबको रोज करनी, रूहानी दिल। फिर हम गए यहाँ से सूक्ष्म लोक में, बाबा से दृष्टि लेना, वरदान लेना, सिर पे हाथ, बाबा से बातें करना, उनको शुक्रिया करना, फिर सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़ कर गए परम धाम शिव बाबा के पास, चाहे परम धाम को एंजॉय करो, डीप साइलेंस में मैं आत्मा हूँ, वहां अपने को देखो, वहां बहुत तेजस्वी आत्मा। आपने सुनी हो मुरली, जो बहुत पवित्र आत्मा है, पवित्रता पर मुरली है, कई हैं पर एक मुरली बहुत पावरफुल। हमारे पांचों स्वरूप पवित्रता के कितने जबरदस्त हैं कि जब तुम यहाँ आत्मा हो, तुम्हारी चमक और आत्माओं से ज्यादा है। जब तुम आत्मा परम धाम में हो तो तुम्हारा तेज और आत्माओं से बहुत ज्यादा है, और तुम बाप के उतने ही समीप हो। जिसकी जितनी प्योरिटी ज्यादा, वो बाबा के उतने ही समीप। जब तुम देव रूप में हो तो तुम्हारे चेहरे पवित्रता से कैसे चमकते दमकते हैं। पूज्य हो तो भी पवित्र, और फरिश्ते हो तो भी पवित्र। तो अपने को उस तेजस्वी स्वरूप में परम धाम में देखें, फिर बाबा के साथ उसकी संपूर्ण एनर्जी मुझ में समा रही है। जितनी देर आप कर सके, एक मिनट से शुरू करना, एक मिनट, दो, तीन, चार, पांच, जितना जो बढ़ाए, फिर वापिस आ गए। ये रूहानी ड्रिल है, तीन बार अगर आप कर लें, 10-15 मिनट आनंद पूर्वक बीतेंगे। और अगली पांचवी प्रैक्टिस रखना, संसार को सकास देना। उसके मैं थोड़े में दो चार तरीके बता देता हूँ। कल्प वृक्ष की जड़ों में ऊपर बैठकर, मैं पूर्वज हूँ, बाबा की एनर्जी मुझ पर आ रही है, मुझसे नीचे कल्प वृक्ष में फैल रही है, एक विधि। दूसरी विधि, मैं ग्लोब के ऊपर हूँ, ये सब बाबा की बताई हुई, और सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है, किरणें फैल रही हैं सारे संसार में। ये दो विधि बहुत पावरफुल हैं। तीसरा करेंगे, मैं फरिश्ता हूँ और ऊपर हूँ, बाबा की पवित्र किरणें मुझे आ रही हैं, मुझसे प्रकृति को जा रही हैं। तो प्रकृति को सकास, तो प्रकृति बहुत मदद करेगी, बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। ऐसे सवेरे के समय को बांट लेना। बाकी टॉपिक्स पर आपने बहुत सुना बहन जी, अभी क्वेश्चंस। जिनको अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर भरनी है, रूहानी शक्ति, वो मैंपन को पूरा छोड़ते चले। जो चाहते हैं विनाश काल में बाबा हमारे द्वारा बहुत काम करे, वो मैपन को छोड़ दे। जिनमें मैपन होगा वो तो मैं ही करेंगे, बस जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही। मैपन छोड़ेंगे तो बाबा हमें अपना मीडियम बना लेगा और हमारे द्वारा बहुत काम करेगा। अब आपके प्रश्न।
बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। एक ही बंदे ने तीन प्रश्न पूछे हैं घुमा फिरा के। अगर विनाश होने वाला है और कर्जा ले लें, कितना अच्छा लगा ना सुन के,
खुश हो गए कि ले लें।
और विनाश हुआ तो कर्जा कौन से जन्म में चुकता करेंगे?
देखिए, कर्मों की हिसाब गति के अनुसार जो लिया है वो देना ही पड़ता है। दोनों बातें हो सकती हैं, उसने लिया हो और आपको दे दिया हो। और यदि ऐसा नहीं है तो आपको अभी किसी न किसी रूप में दे देना पड़ेगा। विनाश कोई एक दिन में नहीं हो जाएगा कि रात को सोएंगे और सवेरे नहीं उठेंगे।
क्या बीकेस को कर्जा लेना अलाउड है?
लेना तो नहीं चाहिए, पर जो काम धंधे वाले, उनके तो धंधे ही कर्जों से चल रहे हैं, चाहे बैंक से ले रहे हो चाहे आपस में ले रहे हो। पर एक अच्छा बीके जो योगी बनना चाहता है, उसको अपने धंधों को भी समेट के रखना चाहिए और इन चक्करों से मुक्त रहना चाहिए। तो विनाश एक दिन में नहीं, आप समझ लो 2000 पूरा होते ही शुरू होगा और 30 तक फुल चलेगा, इसलिए बीच में कर्ज देना पड़ेगा।
क्योंकि संकल्प बहुत वेस्ट जाते हैं कर्जा लेने के बाद या कर्जा देने के बाद, तो इन दोनों चीजों से मुक्त रहना सबसे अच्छी विधि है।
बिल्कुल, कर्ज मर्ज है।
रमेशा जी की बहुत अच्छी किताब है जो हमने थोड़ा पढ़ी थी, पवित्र धन, बहुत ही बढ़िया किताब है जिसमें उन्होंने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे के ये बातें लिखी है।
पढ़ लेना भाई सभी,
मुझे तो मजा आया था पढ़ने।
मैं भी पढ़ूंगा, तो आपको मजा आ गया तो मुझे पढ़नी होगी। मैं थोड़ा बहुत देखा बस, ज्यादा नहीं।
संगम युग के अंत में वही कर्जा निकालकर घर लेने की बजाय किराए पर रहें तो
अच्छा है।
बस इतना आंसर बहुत है ये,
बहुत है,
जिनके
बहुत
लिए, जिनको सचमुच में समझना है, ये बहुत शॉर्ट और अच्छा आंसर मिल गया उनको। बच्चों को बिजनेस के लिए पैसा दिया और बिजनेस नहीं चला और बाबा का पैसा डूब गया क्योंकि आपने पवित्र कमाई से दिया, तो उसका बोझ किसके ऊपर, बच्चे के ऊपर या माँ के ऊपर?
आपने बच्चों को योग्य बनाना चाहिए पैसा देने की बजाय। जो योग्य नहीं बनाते और धन देते हैं उनकी ये स्थिति बनती है। इसलिए बाबा का पैसा नहीं गया, पैसा तो आपका ही गया, बाबा के पास तो हीरे मोती हैं, ये कागज के नोट
का ले लेगा बाबा।
इसलिए अपने बच्चों को योग्य बनाओ, उन्हें खुद बढ़ने दो आगे, और अगर पैसा देना भी है कंट्रोल्ड मनी, ये नहीं जितना था ले जाओ भाई अगले साल ये डबल हो जाएगा। ये जो माया है ना संकल्प की, ये बहुत नुकसान करा रही है। इसलिए अगर देना भी आपका बच्चा है, निश्चित रूप से आप उनको मदद करेंगे तो कंट्रोल्ड, समझ गए ना, कंट्रोल्ड। आपके पास 50 लाख है तो उसे 1 लाख दो, 1 लाख से शुरू करने दो, धीरे धीरे मदद करो। ठीक है भाई, लोग क्या समझते हैं? कई लोगों ने गड़बड़ कर दी, सारी संपदा लगा दी और रोड पर खाने को भी नहीं है।
ब्रह्मा बाबा का तो एग्जांपल दो, ब्रह्मा बाबा का एग्जांपल कितना जोरदार है, अपने बेटे को कुछ भी दिए बिना भेज दिया था उन्होंने।
दिया था थोड़ा सा, लेकिन वो बताया नहीं।
नारायण दादा
जब यशोदा जो बाबा की धर्मपत्नी थी उसने बहुत रिक्वेस्ट की तो बाबा ने 50,000 दिया था उसको बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो बिजनेस में होशियार थे, उन्होंने आगे बढ़ाया और फिर मदद भी आपको की है, इसलिए रिटर्न काफी दे दिया।
ये सातवीं भूमिका क्या होती है?
सातवीं भूमिका ये क्या है कि नवदा भक्ति जिसे कहते हैं ना, उसमें पूजन, नमन, वंदन, कीर्तन, फिर ध्यान लगाना, स्तुति गाना, इस सब की आखिरी स्थिति होती है परमात्म प्रेम में मग्न हो जाना, जिसमें मनुष्य को और इस संसार का भान नहीं रहता, उसको कहते हैं सातवीं भूमिका में चला गया। लेकिन आज जैसे बाबा ने कहा सुन्न तुम्हें नहीं होना है, वो भक्ति की स्थिति है, हमारी स्थिति कुछ और है।
सूरज भाई जी, मेरा लड़का 12वीं में पढ़ता है और वो पढ़ाई के अलावा बाकी सब फालतू बातों पे ध्यान देता है, तो मैं क्या करूं? सुबह उठते ही परेशान करना शुरू कर देता है, वो मेरा है इसीलिए परेशान कर रहा है।
मेरा तो है ही, कितना भी कहो मेरा नहीं है, पर है तो मेरा ही कहने से तो काम नहीं चलेगा। आधा घंटा तो उसे योगदान दो जब वो सोया हो। एक बहुत अच्छी विधि मैंने सबकॉन्शियस माइंड की बताई है कई बार, जिनको भी ऐसे केस हो और आप दूसरों के माइंड को बदलना चाहते हो तो क्या करें, सवेरे जब वो व्यक्ति सोया है 5-7 मिनट तो उसको वाइब्रेशंस दो, वाइब्रेशंस देना आपको आ गया होगा अच्छी तरह, और फिर उसे आत्मा देखकर अच्छे संकल्प दो, जैसे ये बच्चा है, इसे संकल्प दो आप, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें अपने भविष्य को सुंदर बनाना है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। लास्ट संकल्प ऐसा देंगे, कमांड जिसे कहते हैं ना, कमांड ये शब्द है, ऑर्डर से अलग शब्द है कमांड, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, शिव बाबा के बच्चे हो, तुम्हें अपना भविष्य बहुत सुंदर बनाना है, अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आप 5 बजे सवेरे कर रहे हैं, रोज 5 बजे कर दो 21 दिन, निश्चित रूप से उसके विचार बदल जाएंगे, और भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ये बहुत याद करें। आपको इरिटेट होना तो नेचुरल है, लेकिन ध्यान देना कि आप चिड़चिड़े ना हो जाएं।
एक प्रश्न तो मत अजीब सा ही है वैसे,
पर दो अजीब का उत्तर अजीब ही दे देंगे।
होने वाले विनाश के बारे में बताइए, कब तक होगा?
बता दिया ना मैंने, शुरू हो गया है और 2020 पूरा होने पर ये गति पकड़ लेगा और 30 तक लगभग ये दुनिया खाली हो जाएगी, लगभग, क्योंकि विनाश एकदम से नहीं होता, फिर भी चलेगा थोड़ा थोड़ा, पर बहुत सारी दुनिया आपके लिए धरती खाली हो जाएगी। आपके लिए होगा ना सब काम, करेंगे खाली या नहीं? हमें ही खाली करना और हमारे लिए करना है। चलो,
ज्ञान में आने के बाद पुराने संस्कार वश जो विकर्म हुआ उसे चुप्तु करने का तरीका क्या है? सौ गुना सजा मिलेगी,
100 गुना हो जाता है वो। बाबा ने इन्हीं दिनों 77 में कहा था कि तुम्हें 63 जन्मों के विकर्म नष्ट करने में समय नहीं लगता, ब्राह्मण बनने के बाद जो विकर्म होते हैं उसमें ही समय लगता है, इसलिए 1 घंटा स्पेशल योग कर लो और बाबा से क्षमा याचना भी। अच्छा योग करेंगे तो आप तेजी से हल्के होते जाएंगे।
उस विकर्म के कारण ही तो अच्छा योग नहीं लगता।
हाँ, अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्ञान पे ध्यान देंगे, मुरलियां पढ़ेंगे, और नहीं लगता हो तो मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ 108 बार लिख लिया करें उठते ही, धीरे धीरे मन लगने लगेगा। ये तो सत्य है कि जब विकर्म ज्यादा हो जाते हैं तो योग लगता नहीं, जीवन में खुशी रहती नहीं है, लेकिन जब हो गया और फिर बाबा के हैं तो उससे पार होने की विधि अपनानी ही है, छोड़ना नहीं है। बाबा ने मुरली में कहा था कल, कहीं तो युद्ध के मैदान से ही भाग जाते हैं, बाबा के पास आते ही नहीं फिर कभी, लेकिन कई बच्चे हैं हार भी गए तो युद्ध का मैदान छोड़ते नहीं, फिर विजयी हो जाते हैं। ये होपफुल बातें बाबा करता है मुरलियों में। तो जो कुछ हो गया, किसी भी कारण हुआ, वो तो हो गया, अब उससे पार, उससे बाहर आना है।
अपनी कमाई को यज्ञ का पैसा समझते तो हैं, यज्ञ का पैसा अर्थात मेरी लौकिक कमाई से माता पिता पान बीड़ी नॉन वेज खाते हैं, इससे कौन सा विकर्म बनता है और चुप्तु कैसे करें?
कौन से का तो नाम नहीं होता, पर विकर्म बनता है। आप उनको उतना दें कि ये सब व्यसन उनके छूट जाएं, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बात थोड़ी इमोशनल है, वो आपके माता पिता हैं, कलयुग का एंड भी है, उनका पुराना जीवन कैसा रहा है उस पे भी बहुत कुछ निर्भर है।
पहले उनकी कमाई से खुद भी तो खाया होगा ना?
हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, पहला जीवन कैसा रहा है उनका, सारा जीवन खाते पीते रहे, क्योंकि आजकल का जो समय है वो तो पूरा ही, क्या कहूँ, तमोप्रधान में भी कोई अंतिम स्थिति होती हो ना, वहाँ पहुँच गया है खेल। भारत की नारियाँ बहुत अच्छी होती थी अब से 40-30 साल पहले भी, अब तो वो भी चढ़ाने लगी हैं, इसलिए हाल तो बुरा है, लेकिन जितना बचा जा सके बच ले।
अच्छा, एक प्रश्न थोड़ा सा चिंतन में ही है, थोड़ा सोचने वाला। आपके भाग्य की लकीर स्वयं भाग्य विधाता बाप ने खींची है, ऐसा वरदान में बाबा ने सुनाया, इसीलिए भाग्य के गुण गाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, क्या स्वयं बाप भाग्य की लकीर खींचते हैं या हम खींचते हैं? रामनाथ भाई ने तो बताया कि तुमको स्वयं खींचनी है अपने भाग्य की लकीर।
बाबा रास्ता बताता है, कलम हमें दे दी है, खींचनी हमें है। और आपको और कुछ समझ में ना आए तो रोज सवेरे शाम ये याद किया करो, मैं बहुत भाग्यवान हूँ और सबसे बड़ा मेरा भाग्य है कि भाग्य विधाता स्वयं मेरे हिस्से में है, तो भाग्य बदलता जाएगा, बाकी खींचनी खुद है।
एक बहुत लंबी सी बात बहुत ही ज्यादा डिटेल से लिखी है एक माता ने,
बता दो
सार ये है उसका, कि उनका बेटा, भाई का बेटा गाड़ी चला रहा था और उससे एक्सीडेंट हो गया। वो खुद तो वो एयर बैग के कारण बच गया, लेकिन पीछे जिसकी थोड़ी सांस चल रही थी उसकी तरफ से पुलिस वाले ने उस पर केस कर दिया। तो केस कर दिया तो उसमें 4-6 करोड़ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वही एक कमाने वाला था, जो 2-3 थे सब चले गए, तुरंत ही मर गए और बहुत बुरी तरह से मर गए। तो ट्रक वाले के कारण हुआ, वो भी छूट गया। लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरा भाई जी मुझे इसके लिए कुछ समाधान बताएं कि इनके लिए कुछ करना हो तो, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है भाई और उनके तरफ से उस परिवार में प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में सोच सोच के खुद पर असर आ रहा है। तो इस केस से बाहर कैसे निकल सके वो, इसके लिए कुछ करना चाहती हूं मैं।
एक 21 दिन की पहले भट्टी करें, विघ्न विनाशक भट्टी। इसकी विधि है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। ये संकल्प दोनों 3 बार याद करके 1 घंटा योग, कोई भी टाइम फिक्स करें दिन में जब योग अच्छा लगे, और ये योग किसी भी दिन मिस ना हो 21 दिन तक, नहीं तो फिर पहले दिन से। तो अगर आपका पावरफुल योग होगा तो कई विघ्न नष्ट होंगे, सबके लिए बता रहा हूँ। बाकी इनसे ज्यादा विघ्न तो उन बेचारों को है ना, जो जिसके 3 मर गए। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है और उनका कहना भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3-4 करोड़ किसके पास होंगे। तो अगर आप ये करेंगे, और दूसरी भट्टी आपको करनी है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ताकि जो कार्रवाई चले उसमें आपको सफलता मिले। ऐसे 21 दिन की भट्टी हो, योग अच्छा करें, अपने को पूरा ध्यान दे दें, इसको कहते हैं अपने को डेडिकेट कर दें इस कार्य के लिए, तो आप करेंगे तो निश्चित रूप से उसको मदद मिलेगी और कुछ ना कुछ समझौता हो जाएगा।
क्योंकि वो डायरेक्ट तो जुड़ी हुई है ही नहीं, हाँ, किसी भी परिवार से, हाँ, सिर्फ क्योंकि अपना समझ रही है भाई मेरा परिवार, मेरा भाई, हाँ, भतीजा है, तो उस वजह से वो डिस्टर्ब ज्यादा हो रही है।
हाँ नहीं, ठीक है, भावनाएं तो अच्छी हैं, तो 1 घंटा आपका तो योग हो ही जाएगा, आपको भी अच्छे अनुभव होंगे, और जब हम दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं उसका पुण्य भी हमारे पास रिटर्न होता ही है, इसलिए आप अवश्य करें। नहीं, बस मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और विघ्न विनाशक हूँ। तो मास्टर सर्वशक्तिवान हम क्यों कराते हैं हर चीज से पहले, इससे हमारी शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं। तो फिर ये शक्तियाँ दूसरे संकल्प पर काम करेंगी, मैं विघ्न विनाशक हूँ तो ये शक्तियाँ विघ्नों को नष्ट करने लगेंगी, और दूसरे में वो शक्तियाँ सफलता दिलाने लगेंगी। इसलिए हर ऐसी चीज से पहले मास्टर सर्वशक्तिवान करने से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। हो गए सब बड़ा जल्दी?
भगवान को आपने क्या क्या करते देखा वो बताइए आप जरा।
मुझे याद करना पड़ेगा क्या क्या करते देखा। मैं सोच रहा था मुझे परसों के लिए शिविर की क्लास दे दी गई है।
ध्यानी दादी ने एक बार संदेश सुनाया, ध्यानी दादी थे, कौन से संदेशी दादी थे जिन्होंने चार्ट, सूर्य भाई चार्ट दे रहे थे उनको, और ध्यानी रोज देते हैं सूर्य भाई, तो उन्होंने संदेश में देखा और सबको बताया कि सूरज ही वहाँ पहुंचा हुआ था सिर्फ, और अपना चार्ट दे रहा था बाबा को। तो सोचिए कितनी अच्छी कंफर्मेशन है। तो हमने सूरज भाई का चार्ट भी चेक करते देखा बाबा को।
देखा बाबा बहुत करते थे। मैं तो अपने अनुभवों से ये जानता हूँ कि मुझे तो उन दिनों 69, 70, 71, 72, 73 तक 5 साल जैसे बाबा ने डायरेक्ट गाइड किया हो, करेक्ट किया मुझे, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, वो सब करेक्ट किया है, और मुझे ऐसी गाइडलाइन दी, एप्रिसिएशन भी बहुत दिया कि ये ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव उन दिनों में हुए। बहन जी सुना रही तो एक अनुभव और याद आ गया। सोमवार का दिन था, सोमवार के दिन और गुरुवार के दिन हमारे यहाँ उन दिनों भट्टी चलती थी। सवेरे से मौन रहता था, मौन का बड़ा महत्व था हमारे यज्ञ में उन दिनों। तो हम लोग तो फुल मौन रख लेते थे। तो हम किचन में तीन भाई थे उन दिनों, तो पार्टी नहीं थी। मैंने उन दो को भी कहा तुम भी जाओ योग करो शाम को और मैं अकेला भोजन बनाता हूँ। मेरा योग उन दिनों बहुत सुंदर अति सुंदर होता था। तो मैं तो भोजन बनाया, भोजन बना के मुझे इंग्लिश मुरली टाइप करनी होती थी, मैं इंग्लिश मुरली टाइप करने भी चला गया। इधर हिस्ट्री हॉल में बाबा को भोग लगा, कौन बहन थी किसने लगाया मुझे याद नहीं, तो उसको बाबा ने यही दिखाया। डीप साइलेंस है, मुझे उस शब्द याद रहते हैं। किचन है, किचन में साइलेंस है परम धाम वाली। मैं वहाँ अकेला हूँ भोजन बना रहा हूँ और मेरे ऊपर फूलों की बरसात हो रही है। तो मुझे उसके बाद ये संदेश सुनाया। ये क्या थी फूलों की बरसात? क्योंकि मैं फुल टाइम एक अभ्यास करते हुए भोजन बनाया था कि ऊपर से बाबा के वाइब्रेशंस की बरसात हो रही है कंटिन्यूअस। अगर मैं दो घंटे किचन में था तो दो ही घंटे ये मेरी प्रैक्टिस थी। उन दिनों मेरा योग ऐसा ही था सुंदर। तो उसको बाबा ने दिखाया कि फूलों की बरसात हो रही है मेरे ऊपर। तो दादियां बैठी थी सब, मेरे सिवाय सब बैठे थे। आश्चर्य की बात ये है क्योंकि मुझे इंग्लिश मुरली टाइप करनी थी, दो मुरलियां करनी थी, तो कि फिर वो टाइम में बचता नहीं था। आनंद किशोर दादा होते थे, उन्हें वो मुझे काम देते थे, तो मैं तो उसके लिए चला गया। तो फिर मुझे ये संदेश सुनाया गया। बस तभी उसी दिन मुझे बड़ा आनंद आया कि देखो बाबा तक हमारी हर चीज पहुंचती है। मैंने बाबा को क्या क्या करते देखा। मैं सुना रहा था मुझे परसों क्लास करानी। अब मुझे, मैं तो शिविर की क्लास कराता नहीं हूँ, मैं तो फिर अपने ढंग से कराता हूँ। मैं बहनों कह देता हूँ देखो मैं वो क्लास नहीं कराऊंगा जो आप कराते हैं, मुझे फ्री करो तो मैं कराऊंगा। कहा तुम फ्री हो तो टॉपिक तो है बाबा की हिस्ट्री। तो मैं आज सोच रहा था नए 5000 लोग हैं नए शिविर में, मैं सोचा मैं क्या क्या कराऊं इस बार। तो मैंने सोचा मैं ये कराऊंगा कि भगवान नई सृष्टि कैसे रचता है, उसकी एक सुंदर बायोग्राफी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं शुरू करूंगा और उसी लहर में सुनाना है मुझे, और मैं उसको लंबा चौड़ा नहीं करता, आधा घंटा बस। और फिर उनको अच्छे अनुभवों में बैठाना होता है। मेरा लक्ष्य होता है कि जो आए हैं सुन के तो वो बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे ना बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर कोई अच्छे अनुभव उनको हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। तो मैंने क्या देखा इस जीवन में, पहले तो ब्रह्मा बाबा को देखा था उनके बहुत तेजस्वी रूप में, बहुत तेजस्वी रूप था। मुझे एक चीज हमेशा याद रहने लगी कि जब बाबा हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करते थे तो इधर का गेट है ना पहला जिधर बहने बैठती हैं, वहां खड़े होते थे 10 सेकंड, सब पर एक नजर डालते थे और उस नजर से ऐसा करंट फैलता था पूरे हॉल में जो रिमार्केबल था। वो अनुभव बहुत याद रहता है। फिर बाबा की झोपड़ी का अनुभव याद रहता है। ये झोपड़ी थी बहुत सुंदर, यहाँ तक ये बगीचा, यहाँ तक सुंदर अंगूरों के हरे हरे बेल छाए हुए सिंपल झोपड़ी खजूर के पत्तों की। 68 जून का समय, मैं बगीचे के बाहर घूम रहा हूँ शाम को 6:30 बजे और बाबा अंदर बैठे हैं। कोई कोई दादी मिलने जा रही है, हमें तो डर लगता था मिलने कैसे जाएं, छोटों को तो डर लगता है ना। बाबा की झोपड़ी से डीप साइलेंस के ऐसे वाइब्रेशंस फैले हुए थे कि मेरा चित पूरी तरह शांत हो गया। ये भी मुझे बहुत याद रहता है। बाबा से उनके कमरे में मिले थे जब पहली बार आए थे, एक एक से मिलते थे बाबा, अच्छी बात करते थे, अच्छी माना लंबी। बाबा ने दृष्टि दी और मुझे बॉडी लेस कर दिया, शरीर नहीं साकार, शरीर ही कर दिया। वो भी मुझे याद रहता है, वो मेरे लिए योगी भव का वरदान था। अव्यक्त बाबा का पाठ शुरू हुआ, पहले दिन से सब कुछ देखा, वो तो वंडरफुल सीन है, दृष्टि मिलती थी। बाबा कैसे पालना करता है अपनी आत्माओं को, कैसे वो बल भरता है अपनी शिव शक्ति सेना में, कैसे सबकी सुनता है, वाइब्रेशंस कैसे फैल जाते हैं। आपने तो नीचे देखा होगा, बड़े बड़े जब 20,000-25,000 भाई बहने बैठे हैं, कैसी डीप साइलेंस होती। हमने तो यहाँ भी देखा, बाबा को मजाक करते हुए भी देखा। सुना दो एक मजाक, इसी हॉल में बाबा आए हुए थे, ये स्टेज नहीं होती थी, यहाँ सीधा था प्लेन। तो संदली जी ने, संदली कहते ना, कुर्सी तो थी नहीं यज्ञ में, हमारे तो एक भी कुर्सी यज्ञ में नहीं थी, केवल बाबा के लिए एक तारों की थी बस, यज्ञ में कोई कुर्सी नहीं होती थी, हम बोरी बिछा के बैठते थे नीचे। तो यहाँ बाबा आए हुए थे, मधुवन वालों से मिल रहे थे, मधुवन वाले थोड़े होते थे, 40 होंगे। तो आगे आगे मेरठ में एक कमल सुंदरी दादी रहती थी, वो भी बैठी थी, उसको लोग कहते थे छू छू दादी, समझ गए ना, कोई छुए भी नहीं उसको, नहीं तो नाने जाएगी। अब बाबा बैठे हैं, अब बाबा क्या करते थे, जब मधुबन वाले होते थे, ये कई बार किया होगा, ड्राई फ्रूट बहुत सारे रखे थे, पीछे फेंके, इधर फेंके, इधर फेंके, फिर एक बार कमल सुंदरी दादी के ऊपर फेंक दिए। अब जो आसपास बैठे थे ना, चिपट गए साड़ी, और वो गए हटो, और बाबा जोर से हंसे। बाबा ने जानबूझ के फेंके होंगे, इतना मजा है, मतलब 5 मिनट तो हंसते ही रहे सब। और वो तब भी वही कर रही, क्यों छुआ मुझे, क्यों किया। अब बाबा ने फेंके थे, बाबा की क्या शिकायत थी। तो ऐसे बाबा बहुत बार करते थे। एक हंसी का केस और सुनाऊं, तब तो बाबा इतनी जोर से हंसे थे कि हम भी अब नहीं हंस रहे हैं। तो बाबा अपने कमरे में आए हुए थे, वो भी मधुबन निवासियों से ही मिलने का टर्न था। तो बाबा अपने कमरे में बहुत बार आए, तो भाई बैठे थे, तब थोड़े से भाई थे, शायद 15 या 16 होंगे। तो एक अर्जुन दादा हुआ करते थे, कई तो जानते हैं, अभी उसको बेचारे को बुद्धि कम थी, गुस्सा भी बहुत आता था, उसे लोग छेड़ते रहते थे गुस्सा दिलाने के लिए, जैसे छोटे बच्चों को मजा आता है। तो बाबा के पास पहुंचे, सब टर्न वाइज मिले, अर्जुन दादा का नंबर आया। अर्जुन दादा बिल्कुल बाबा के पास प्यार से जाके बैठे और शिकायत की, बैठते ही शिकायत की, बाबा ये 5 मुसलमान हैं, मुझे बहुत तंग करते हैं, 5 भाई उनका नाम रखा हुआ था उसने, 5 मुसलमान मुझे बहुत तंग करते। तो उनमें से एक वहीं बैठा था, उसने कह दिया बाबा ये भी बहुत तंग करता है। उसने इतना गुस्सा किया, गुस्सा करके भाग गया, और बाबा इतने जोर से हंसे, बहुत जोर से हंसे। तो बाबा के ये सीन भी बहुत देखे। बाकी तो ज्ञान योग की बातें बहुत सारी हैं, अब 11:15 हो गए बहन जी, विदाई करें। हाँ वो तो मुझे पता है, समाप्ति समारोह पे मैं क्लोजिंग सेरेमनी करने।
जिन अर्जुन दादा की बात बता रहे हैं, वो मुरली पे लास्ट दिनों में भी मुरली पर धागा बांधने की सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे,
जिसमें मुरली डालते हैं।
उससे पहले तो वो बहुत ही अच्छी शारीरिक सेवा करते थे, सिक्योरिटी की भी करते थे, और वो मुरली पर धागा बांधने की भी करते थे बुढ़ापे में। और जब वो खाना लेने जाते थे भूरी दादी के पास, तो वो जान करके पूछती थी अर्जुन कितने, और अर्जुन ऐसे बोलता था। मतलब रोटियों की इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, इतनी, तब पतली पतली रोटियां होती थी मधुबन में, अब तो फिर भी मशीन से बनती है, थोड़ी बड़ी होती है। तो उन दिनों जो गुजराती माताएं बनाती थी तो बहुत पतली पतली, तो उसमें इतने में 10-12-15 रोटियां आ जाती थी, तो वो उनकी तो बड़ी उंगलियां थी, तो वो इतना सारा वो बताते थे और वो उतना सा एक जत्था सा उठाती थी और उसकी थाली में फेंक देती थी।
उसमें ये खूबी थी, देखो बुद्धि कम होते हुए वो मेरे पास रहा किचन में बहुत समय, तो इतना काम कर देता था जो मैंने उसको सिखा दिया ऑनेस्टली। अच्छा घड़ी देखनी उसको तो आती नहीं थी, अब मुझे शाम को 3:30 बजे चाय बनाने आना है। मैं उसे कहता था अर्जुन चूल्हा जला के पानी दूध गर्म करके जब वो उबलने लगे ना तब मुझे उठाने आ जाना 3:30 बजे। 3:30 कैसे, तो उसको सिखा दिया था ये छोटी सुई 3 के आगे और बड़ी सुई यहाँ नीचे तब आना, एक्यूरेट टाइम पर मुझे उठा। सूरज भाई चलो दूध पानी उबल गया है पत्ती डालो, जोर से सबको उठा देता था। काम एक्यूरेट, जो ड्यूटी मिली उसमें कोई सुस्ती नहीं, परफेक्ट। इस खूबी पर उस बाबा उससे खुश था, बाबा
उनको दादी।
हाँ और बाबा के बारे में आपने सुना होगा, बाबा ने उसे बहुत अच्छी ड्यूटी दे दी थी साकार में, क्योंकि कोई होता नहीं था सारा दिन, तो उसको पुलिस की ड्रेस पहनाई और यहाँ बाहर जो ऑफिस है ना ये यहाँ बैठा दिया, निर्भय भाई का ऑफिस है आंगन में ये, वहाँ बैठा दिया तो लोग देखते थे पुलिस वाला बैठा हुए। तो देखो बाबा की विधि कि जिससे जिसको कुछ नहीं कर सकता उसको भी यूज कर लिया।
और एक बार मनमोहिनी दीदी बीमार थे जब, तो उनको बाहर पहरे पर बिठा दिया, किसी को मिलने नहीं जाने देना, उन्होंने दादी प्रकाशमणि जी को भी रोक दिया। उनको भी नहीं मिलने जाने दिया। और आज जहाँ भी अर्जुन दादा होंगे ना उनको हिचकियाँ आ रही होंगी। इतने सब मिलकर उनको याद कर रहे हैं तो उनको हिचकियाँ लग गई होंगी अब तक।
चलो भाई ओम शांति।
बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय सूरज भाई जी। हाँ जी आओ आओ। हाँ जी
मेरा
सूरज भाई के साथ का कोई
मेरा तो मैं ही सुन। आ जाओ
आप आगे आ जाइए आइए। कश्मीरा बहन आपको मुलुंद के सभी भाई बहनों की तरफ से सभी स्पीकर्स को गिफ्ट दे रहे हैं।
अच्छा
जी
ये तो कमाई होगी।
ये भी गिफ्ट लेकर आए हैं।
थैंक यू। अब तो बहुत पुराने हैं ना, परीक्षा भी दे दो।
ओम शांति। आज से 1.5 साल पहले मेरे को सीवियर अटैक आ गया था और मैं बॉम्बे में साइन हॉस्पिटल, साइन में किकाबाई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और डॉक्टर दारूवाला थे, उन्होंने मेरा एंजियोग्राफी किया और उसमें सीवियर ब्लॉकेजेस आ गए। फिर अर्जेंट बोला कि अभी का भी यहां से एशियन हार्ट हॉस्पिटल में बाईपास कराने गए। तो मैं सोचा बाईपास कराने का है तो मैं बोला सोच के करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन होता। तो हमारे एक दोस्त थे पुरुषोत्तम भाई करके, तो उन्होंने बोला अपने को बाईपास नहीं कराने का है और यहां से निकल जाइए। हॉस्पिटल में से मैं निकल गया। फिर हमको समाचार मिला सूरज भाई पार्ला सेंटर पे आए थे, तो 8 दिन के मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सीधा मैं सूरज भाई के पास गया था। सूरज भाई ने बोला डोंट वरी, बताया आप मास्टर, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, उसका मैंने प्रयोग किया वो 21 दिन करो। तो मैंने 21 दिन का 3 बार किया और मेरा सब कुछ एकदम क्लीन हो गया। थोड़ी परहेज मैंने किया था, सब खाने पीने का शक्कर, आज तक मैंने कोई दवा नहीं खाता हूं। मेरे को 20 गोली लिख के दिया था कि ये तुमको खाने का, अभी तक एक गोली भी नहीं खाता हूं और आज तक कोई तकलीफ नहीं है मेरे को।
प्रभु जी मेहरबान।
मेरा एज आपको कितना लगता है?
78। अरे वाह भाई, इसके लिए भी ताली बजा रहा।
ये सूरज भाई की लकीली सूरज भाई उधर पार्ला आ गए थे, तो मैं और मेरा दोस्त पुरुषोत्तम भाई हम दोनों ताबड़तोब गए और सूरज भाई इतना बिजी थे, क्लास चल रहा था, जैसे क्लास पटा और डायरेक्ट हम लोग सूरज भाई को बोला 2 मिनट काम है, तो बोला आप चिंता मत करो, खाली मैं बोलता हूँ इतना करो, मैं मास्टर कर सकती हूँ
ऐसा करो,
और फिर मेरे को मिलना, तो आज मिलने को आया हूँ
भाई बाबा का काम था ये सर, उसको आपने शुक्रिया।
मेरे को बोला था पलंग चढ़ने का नहीं, ऊपर सीढ़ी चढ़ने का नहीं, मैं रेलवे का ब्रिज भी चढ़ जाता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है मेरे।
हमारे नितिन जो एडवोकेट हैं, यज्ञ के भी हैं, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के, आप जानते होंगे नितिन भाई एडवोकेट, हाँ, और वो यज्ञ के भी एडवोकेट हैं, सारे काम करते हैं, रमेश भाई के साथ थे। उनका हाल तो इतना बुरा हो गया था, मतलब मृत्यु ही मृत्यु की ओर जा रहे थे। मैं उन दिनों पानीपत में था, तो जंगल में बनाया ना उन्होंने शांति सरोवर क्या, हाँ, तो मैं बाहर सड़क पे घूम रहा था, जंगल है वहां कोई नहीं था, फोन आया उनका, वंडरफुल बात थी, दोनों किडनी चेंज कराई थी, उसी के भाई की मृत्यु हुई थी, इन्फेक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, बिल्कुल मृत्यु, कोई तरीका नहीं था बचने का, और वो बाबा के प्रयोगों से बचा, और फिर पिछले साल उसको कुछ हुआ था, फिर बच गया, तो पता वो क्या करता है, किचन में सेवा के लिए आता है 15 दिन, कहा मैं और सेवा नहीं करूंगा, मैं केवल किचन में करूंगा, यहाँ भी रखा उसको, ज्ञान सरोवर में भी रखा, हाई कोर्ट का एडवोकेट है और बहुत अच्छा, अपना मतलब बहुत सारे काम यज्ञ के जमीनों के वही करता है। तो ये बाबा की, ये किसी और की नहीं, हम तो केवल राह दिखाते हैं, ये ऊपर से काम होता है, मैं हमें बहुत अनुभव करता हूँ कि ये हमारा काम नहीं है, ये वही कहलवाता है और वही करता है, ये मैं कम से कम 100 केसेज में अनुभव कर चुका हूँ कि मैंने कहा उनका हुआ, मुझे नहीं रहता मैंने कहा हुआ, मुझे क्लियर फीलिंग होती है उसने ही मुख से बुलवाया था, नहीं तो किसी विशेष बीमारी के बारे में हमें क्या पता, मैं कोई डॉक्टर थोड़ा ही हूँ, और उसने ही किया, उसकी मदद के बिना कुछ नहीं होता है। तो सचमुच ये बाबा के बहुत चमत्कार चल रहे हैं, मैं तो ये देखता हूँ, ऐसे ऐसे केस लोगों के ठीक होते हैं, हमें भी नहीं पता होता कि ठीक हो जाएगा, हम तो बता देते हैं भाई बाबा जाने और ये जाने, ठीक हो जाते हैं बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब योग कर लेते हैं, ये पानी चार्ज करके पीना, एनर्जी देना, ब्रेन को एनर्जी देना, ये इसकी विधि है, इसको यूज करने के ये काम करेगा। चलो सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें रिसीव करेंगे।